الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم تولى وأعطى فمن يتولى. بسم الله الرحمن الرحيم تولى وأعطى فمن يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. صل على محمد وعلى محمد والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے. جتنا پیار اللہ کو انسان سے ہے کسی سے نہیں ہے. ساری مخلوق اس نے بلکہ ساری کائنات اس نے انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے. خلقت الخلق لاجلک. اے انسان میں نے ہر مخلوق تیرے لیے بنائی ہے. وخلقتک لاجلی اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. انسان کی تعریف کیا ہے؟ کل کی گفتگو سے آج کی گفتگو کو جوڑوں کہ انسان کی تین قسمیں ہیں. ایک جو انسان نظر آتا ہے جسے اگر میں ممبر کی زبان میں کہوں تو انسان نما، جو انسان دکھائی دے مگر حقیقت میں انسان نہ ہو. ہاتھ پیر ویسے ہی ہوں گے، ناک کان ویسی ہی ہوگی، چال ڈھال بھی وہی ہوگی اور ہمارے بھی درمیان میں ہو سکتا ہے وہ بیٹھا ہو، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جو انسانوں جیسا نظر آ رہا ہے وہ انسان بھی ہو. اسے انسان نما کہا جائے گا. پھر دوسری قسم ہے انسان جو مطلقاً یہ کہلایا جا سکے کہ وہ انسان ہے. اس کی کیا کسوٹی اور پیمانہ ہے؟ انسان مرکب ہے روح اور بدن کا، اور ان دونوں کو جوڑنے والی چیز کو نفس کہا جاتا ہے. بلا تشبیہ صرف ذہن قریب کرنے کے لیے، ان جوانوں کے لیے، مثلاً یہ عمارت بہت ساری چیزوں سے مل کر بنی ہے، مگر وہ جو بہت ساری چیزیں ہیں انہیں جوڑنے والے کچھ مثلاً کیمیکل ہیں، مسالے ہیں، سیمنٹ ہے، ہر وہ چیز جو دوسری چیز کو جوڑ رہی ہو، دو مختلف چیزوں کو جو جوڑنے والی چیز ہے، اس جوڑنے والی چیز کو نفس کہا جاتا ہے. لہذا نہ بدن کو موت ہے نہ روح کو موت ہے، جو موت ہے وہ نفس کو ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. بدن، صلوات پڑھ لے ذرا محمد والے، بدن نہیں مرتا، بدن تبدیل ہوتا ہے، بدن دوسرے بدن میں ڈھل جاتا ہے. خود ہمارا اپنا بدن جب دنیا میں آیا تھا، اور مثلاً آج جو ہے وہ شاید سینکڑوں مرتبہ بدلا ہے، یہ وہ ہے ہی نہیں جو دنیا میں آیا تھا. جی، سامنے کسی بات ہے کہ اس وقت کی اگر اپنی تصویریں اٹھا کر دیکھ لیں تو ہمیں بھی یقین نہیں ہوگا کہ ہم ہی ہیں. یہ مسلسل اس کے جو خلیے ہیں، جو اس کے سیل ہیں، یہ مسلسل تبدیل ہوتے آئے ہیں اور یکسر تبدیل ہو چکے ہیں. اور اسی طرح جب یہ قبر میں جائے گا تو کسی اور بدن میں یہ بدن ڈھل جائے گا، تب بھی بدن نہیں مرے گا. یہ قبر میں جا کے کسی اور بدن میں ڈھل جائے تو ہم اس پہ پریشان ہو رہے ہیں. یہ چلتا پھرتا بھی تو کئی مرتبہ بدل چکا ہے. یہ ابھی زندگی جو ظاہری زندگی ہے اس میں بھی تو کئی مرتبہ بدل چکا ہے. تو انسان کا بدن نہیں مرتا، और रूह भी नहीं मरती इंसान की। हमारे रब है, बदन में आने से पहले भी थी, बदन में आने के दरमियान भी है, बदन से निकलने के बाद भी रहेगी। एक राकेब है, एक मरकब है, एक सवार है, एक सवारी है। ये जो हमारा बदन है ये सवारी है रूह के लिए, रूह इस पे सवार है। अलबत्ता अल्लाह ने ऐसे बनाया है, ये इंसान कभी कभी तसर्रुफ कर लेता है, कभी कभी अपने बदन को अपनी रूह पे सवार कर देता है। जब ये इंसान अपने बदन को अपनी रूह पे सवार कर देता है तो वही इंसान है जो इंसान नजर आता है, हकीकत में जानवर है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान के अल्फाज हैं, लहुम आदानुन ला यस्माउना बिहा, उनके लिए कान थे वो सुनते नहीं थे, सुनते नहीं है, ला यस्माउना बिहा सुनते नहीं है, सुनते नहीं, सुनेंगे नहीं, यानी फिले मुजारे की जो कैफियत है। लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, दिल हमने इनको दिए, इनके लिए दिल हैं मगर ये तो समझते ही नहीं है जी। उलाएका कल अनआम बल हुम अज़ल, फिर अल्लाह ये जो लहजा है ना अल्लाह का, ये जो अल्फाज हैं इसका लहजा तो खैर वही बताएंगे जो अल्लाह का लहजा जानते हैं, तभी कुरान मजीद की तिलावत करने के लिए नबी को भेजा है। हर अरबी जानने वाला कुरान की तिलावत नहीं कर सकता, बल्कि कुरान की तिलावत के लिए उसे भेजना जरूरी था जो अल्लाह के लहजे से आशना हो। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले, भाई माशाल्लाह बड़ी तादाद में तशरीफ फरमाए, इससे बेहतर सलवात लहजा वो जो इंसान नुमा तो जिसके बारे में कुरान इस अंदाज से बात कर रहा, फिर इंसान के लिए कैसे, क्या तो कसौटी, क्या पैमाना है कि ये इंसान है। इंसान को अगर अपने आप को ये जानना है कि मैं इंसान भी हूं या नहीं, तो कम से कम कसौटी ये है कि देखे उसका नफ्स लवामा जिंदा है। अगर उसका नफ्स लवामा जिंदा है, मैं एक बात कह रहा था उसे थोड़ा सा और बेहतर कर लूं, नफ्स की चार किस्में अहले इरफान ने और इंसान शनासों ने बयान किए। नफ्स की एक किस्म है नफ्स अम्मारा जी, जो इंसान नुमा है, मुसलसल गलाजतों में और मुसलसल गंदगियों में डूबा हुआ और उतरा हुआ इंसान, जो बज़ाहिर इंसान नज़र आता है हकीकत में इंसान नहीं है, वो नफ्स अम्मारा वाला है, नफ्स रखने वाला इंसान। फिर उसके बाद एक नफ्स है नफ्स लवामा, या उससे हटकर एक और नफ्स है दूसरी किस्म नफ्स लवामा, जो नफ्स मलामत करता है, बुराइयों पर अंदर से आवाज़ आती है तुमने बुरा किया है, अच्छाइयों पर अंदर से एक आवाज़ आती है शाबाश। वो जो टोकने रोकने वाला समझाने डांटने वाला नफ्स है वो नफ्स लवामा है, मलामत के खानदान का लफ्ज है जी। और फिर तीसरी किस्म है नफ्स मुसव्वला, नफ्स मुसव्वला सूरह मुबारक यूसुफ के अंदर सव्वलत लकुम अनफुसकुम, इन्होंने जो हजरत भाइयों ने जो हजरत यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और फिर आकर, अच्छा जाने से पहले भी सब मुतमईन है कि हम सही करने जा रहे हैं, आने के बाद भी सब मुतमईन है कि हम सही करके आए, ये कैसे हो गया, ये कौन सा इंसान हो सकता है जो बुराई से पहले भी कह रहा है कि मैं सही करने जा रहा हूं, बुराई के बाद भी उसे कोई पशिमानी नहीं हो रही। ये जो बुराई को बुराई समझ नहीं रहा बल्कि बाज़ औक़ात बुराई को अच्छाई समझ रहा है, बड़ी खिदमत समझ रहा है, बहुत बड़ा आदमी है ये बड़ी खिदमत करके आया है ये समझ रहा है, ये जो नफ्स रखने वाला बंदा है इसे कुरान की जबान में नफ्स मुसव्वला, वो नफ्स जो इगवा हो चुका है और इगवा होकर ऐसे माहौल में रहा कि वो उसी माहौल का हो गया, और फिर जब वापस पलट कर आता है तो वो यहां की जबान नहीं बोलता, वहां की जबान बोलता है जहां इसे इगवा करके ले गए थे, लेकिन जो वहां से वापस आकर अपनी जबान को याद कर ले और उसे अपनी जबान याद आ जाए उसे नफ्स उस नफ्स को नफ्से तवाब कहा जाता है। इसीलिए उस नफ्स से कि जिसको नफ्से तवाब कहा जाता है उससे अल्लाह प्यार करता है। आप जरा गौर करें अल्लाह किस किस से प्यार करता है। एक लिस्ट है कुरान मजीद के अंदर, एक फहरिस्त है कुरान मजीद में जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। उनमें से वो है कि जो तौबा करने वाले हैं, इन अल्लाह युहिब्बुत तवाबीन। जरा सलवात अदा करें, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। या अल्लाह, और नहीं है जो इबादत गुजार हैं, और नहीं है जो बड़े बड़े इंसान हैं, बड़े जो सही इंसान हैं। बहुत से लोगों, बहुत से अच्छे काम करने वालों के लिए अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन तौबा करने वाले को अल्लाह कह रहा है मैं तौबा करने वाले से मोहब्बत करता हूं। ये कौन है जिससे अल्लाह, ये कौन है जो तौबा करने वाला है, कैसा है कि जो तौबा कर रहा है, यानी कुछ किया है उसने, पलट कर वापस आया है। आपने कभी सुना हो कि किसी माँ के चार बच्चों में से एक बच्चा अगवा हो गया हो और वो मसलन 6 महीने की तकोदो के बाद, भाग दौड़ के बाद, ताल्लुकात के इस्तेमाल और तरह तरह के कानूनी रस्तों को अपनाने के बाद वो अगवा शुदा बच्चा, नफ्से मुसव्वला की बात कर रहा हूँ, वो अगवा शुदा बच्चा माँ की आगोश में दोबारा आया हो, तो आप सब देखते हैं, पूरा ख़ानदान देखता है कि बच्चे तो इनके चार हैं मगर मोहब्बत इन्हें उससे ज़्यादा है जो अगवा होकर चला गया था और पलट कर दोबारा इनकी आगोश में आ गया है। अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार इसलिए करता है कि ये चला तो वादी शैतान में गया था, शैतान ने इसे अगवा कर लिया था, ये पलट कर वापस आया है, अपना घर भूला नहीं है। ये जो अपना घर, सलवात पढ़ लेना नबी की दा, ये जो अपना घर भूला नहीं है इसे तौबा करने वाला कहा जाता है। तौबा कर वो रहा है जिसे एहसास हो रहा है कि मैं गलत था और गलती में था और गलत जगह चला गया था और अब मैं सही आ गया हूं, अपनी जगह वापस आ गया हूं। ये जो नफ्से मुसव्वला है या मुसव्वला, दोनों इस्तेमाल के मुताबिक जेर और जबर का फर्क आएगा। ये जो नफ्से मुसव्वला है ये वो है कि जिसको बुराइयां अब बुराइयां नहीं लगती, बुरी चीजें अब बुरी नहीं लगती, बल्कि बाज़ औक़ात बुरी चीजों को वो अच्छा समझ रहा होता है और उसी को वो खिदमत समझ रहा होता है, उसी को वो दीन समझ रहा होता है, उसी को वो इंसानियत समझ रहा होता है। वो अगवा शुदा, अच्छा, शैतान का काम यह है कि उसे इतना सजा सजा कर उसके आगे रखता है कि वो बुराइयां उसे अच्छाइयां लगने लगती हैं। जब बुराइयां अच्छाइयां लगने लगें तो फिर ये नफ्से मुसव्वला है और खतरनाक। वो भाई हजरत यूसुफ के साथ जो कर रहे थे वो अपनी दानिश में बहुत बड़ा काम कर रहे थे, वो सब मुत्तफिक थे कि हम ठीक कर रहे हैं, और बाद में भी उन्हें वो, तो हजरत याकूब का बार बार रोना, हजरत याकूब का मुसलसल गिरिया करना उन्हें बिलाखिर यहां तक ले आया कि हमने गलती की है। मुझे यही एक जुमला कहने दीजिए, जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया था वो मारने के बाद तकबीर बुलंद कर रहे थे और अहले बैत ने हमें जो हर साल और हमेशा हुसैन पे रोने का हुक्म दिया है, इसलिए रोते रहो हुसैन पर कि उन्होंने, जिन्होंने गलती को सही समझ के अंजाम दिया था, वो अपने घर वापस आ जाए, उन्हें एहसास हो जाए, उन्हें एहसास हो जाए कि उन्होंने गलती की है। हजरत याकूब के गिरिए के पीछे एक बहुत बड़ा फलसफा है। बिलाखिर वो इस बात की तरफ मुतवज्जे हुए और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है और अब क्या करें, वक्त गुजर चुका, बहुत सा नुकसान हो चुका। ये नफ्से मुसव्वला है। और फिर चौथी किस्म नफ्से अम्मारा लवामा मुसव्वला, चौथी किस्म है नफ्से मुतमईना। नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा, नफ्से मुसव्वला और नफ्से मुतमईना। हम दर हकीकत इस इत्मीनान के साथ जिस दरवाजे पर बैठे हैं वो नफ्से मुतमईना का दरवाजा है। तो अजीजों, कम से कम जो अर्ज करना चाह रहा था वो ये कि कम से कम इंसान होने की कसौटी नफ्स से लवामा का होना है। मलामत करने वाला नफ्स अगर हमारे अंदर मौजूद है तो गोया भी हम इंसान हैं, मगर खतरे में है, मुसलसल खतरात का सामना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लिहाजा ये जो खतरात में है इसी मफहूम को अल्लाह बयान करता है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये मुसलसल खतरे की जद में है, मुसलसल नुकसान की जद में है, और मुसलसल नुकसान की जद में नफ्स अगर अपने आप को संभाल सकता है तो फिर उसे नफ्से अम्मारा, उसे नफ्से मुतमईना, माफ़ कीजिएगा, उसे नफ्से मुतमईना के दरवाजे पे आना होगा। देखिए कुरान मजीद में एक आयत जिसे कल उसके मुकम्मल तिलावत भी नहीं हो सकी थी और इस्तफादा मुझे जो आज करना था वो ये सूरह मुबारक आल इमरान की सातवीं आयत है, और इस आये करीमा में परवरदिगार आलम ने अपनी आयात को दो हिस्सों में और दो किस्मों में तकसीम किया है। इरशाद हो रहा है, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, वो अल्लाह जिसने ए हबीब आप पर किताब को नाजिल किया, फी है आयातुम मुहकमात, इन इस किताब के अंदर आयात मुहकमात हैं, हुन्ना उम्मुल किताब, और ये आयात मुहकमात ही असल किताब है, व उखरो मुतशाबिहात, तवज्जो, व उखरो मुतशाबिहात, और दूसरी जो किस्म है आयात की वो मुतशाबिहात हैं, फअम्मल लदीन फी कुलूबिहिम ज़ैग, बस जिनके दिलों में जंग लग चुका है, फयत्तबिऊना मा तशाबह मिन, वो आयात मुतशाबिहात की इत्तबा करते हैं। ये लफ्ज़ इत्तबा कल आपके जहन में होगा कि हम चाह रहे थे कि इसके ऊपर थोड़ा सा गौर हो, ये लफ्ज़ इत्तबा है ये इताअत से हट करें, इताअत अक्वाल में है, इत्तबा अफ़आल में है। कुरान की अल्लाह ने दो आयतें, दो तरह की आयतों का तस्करा किया है, सूरह आले इमरान है आयत नंबर 7 है, आयात मुहकमात और आयात मुतशाबिहात, जिनके दिलों में जंग लग चुका है भाई आपकी तवज्जुहात काबिल रश्क हैं, बहस भी इंतहाई खुश्क और संजीदा है, और जिसका तकाजा यह है कि तवज्जो एक लम्हे के लिए भी दूर नहीं हो पाए, तो मेरी बात और मेरी मेहनत सवारत हो पाएगी जी। इत्तबा का लफ्ज़ है, इताअत का लफ्ज़ नहीं है, अक्वाल में इताअत और अफ़आल में इत्तबा, ये अगर आयात से मुराद लफ्जी कलाम ही है बस, तो फिर यहां ये लफ्ज़ इताअत का आना चाहिए था। कलाम अल्लाह का है, मुझे अपने रुख को, फिक्री रुख को ठीक करना होगा, कलाम यही है जो है, यहां अफ़आल की बात हो रही है, यानी कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो मुहकमात में से हैं, कुछ ऐसे हैं जो मुतशाबिहात में से हैं। अल्लाह के बंदों में दो तरह के बंदे हैं, मैं अपने मजमून का लफ्ज इस्तेमाल करूं, अल्लाह के नजदीक इंसान दो तरह के हैं, वो इंसान जो मुहकम इंसान है, वो इंसान जो मुतशाबे इंसान है। ये लफ्ज़ मुतशाबे मेरे मोहतरम सुनने वालों, इसको अगर मैं और मानूस लफ्ज में ढाल दूं तो इश्तबाह का शिकार, शुबहे का शिकार, गलती का शिकार, मुगालते का शिकार लोग और मुतमईन लोग, जिनकी जिंदगियों में इत्मीनान है वो और लोग हैं, जिनकी जिंदगियों में मुगालतात हैं वो और लोग हैं। अब बस दो हिस्सों में हम अपने इस बहस को, यानी इंसान दो हिस्सों में तकसीम या दो उनवानों में तकसीम हो रहा है, इंसान मुहकम और इंसान मुतशाबे। कुरान की आयात मुहकमात, कुरान की आयात मुतशाबेहात। मैं ये सोच रहा हूं और पढ़कर और देखकर बात कर रहा हूं कि इंसान भी दो तरह के हैं, मुहकम इंसान और मुतशाबे इंसान। वो जो मुतशाबे इंसान है वो कभी इल्मी मुगालते का शिकार होता है, اور کبھی عملی مغالطے کا شکار ہوتا ہے. بڑی عنایت آپ کی توجہ, آپ کا ممنون ہوں بھائی. آج خاص طور پر آپ کی توجہ زیادہ چاہیے. متشابہ انسان ہے وہ مغالطے کا شکار, وہ اشتباہ کا شکار, وہ شبہ کا شکار انسان, جس کو میں واپس نہیں جا رہا, پھر آپ بحث کو آگے بڑھا رہا ہوں. یعنی ایک بات کر چکا ہوں, اس میں ایک اور بات تھی, مگر اب وہ جو مغالطے کا شکار انسان ہے, تو مغالطہ اس کا کبھی علمی ہے اور مغالطہ کبھی اس کا عملی ہے. کبھی علمی طور پر مغالطے کا شکار ہے, سمجھتا ہے کہ سمجھتا ہے, لفظ اور بدلتا ہوں, نہیں جانتا کہ نہیں جانتا, یہ علمی مغالطے کا شکار. یہ اپنے آپ کو جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں جانتا, اور اس اطمینان کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کو تو شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ جانتا ہے. یعنی خود اشتباہات کا شکار اور دوسروں کو بھی اشتباہات میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے. وہ جو علمی مغالطے کا شکار ہے انسان, اس کی میرے اپنے تحقیق اور اپنے مطالعے کی روشنی میں تین قسمیں ہیں. ایک وہ جو خود محور ہے, اسیر ذات ہے, جی خود محور, خود پرست, جو اپنے علاوہ کسی اور کو دیکھتا ہی نہیں ہے, اسے اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کوئی اور نظر ہی نہیں آتا, اور وہ جب خود محور ہوتا ہے تو سب چیزوں کو اپنے مطلب میں ڈھالتا ہے. خود کو تبدیل کرنے اور بہتر کرنے کا اسے نہ صرف جذبہ نہیں ہوتا, اسے احساس نہیں ہوتا, اسے سوچ نہیں ہوتی. یہ جو خود محور ہے, یہ جو خود کا اسیر ہے, اسے علامہ اقبال نے 6 مصروں میں یاد کیا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں, ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے. اب کیونکہ وہ ہندوستان کا زمانہ تھا تو انہوں نے ہند بول دیا, میں پاک بھی بول سکتا ہوں اور وزن سے بھی مصرا نہیں نکلے گا. پاک میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے, نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق. ہند میں پاک میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے, نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. اب یہ کسی اور کے غلام نہیں, یہ اپنے غلام ہیں, یہ اسیر ذات ہیں. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ جو اسیر ذات ہے, یہ جو خود محوری کا شکار ہے, یہ مغالطہ علمی میں مبتلا ہے, یہ شبہ علمی میں مبتلا ہے. دوسری قسم وہ جہل مرکب کا شکار ہے, وہ جاہل مرکب جو نہیں جانتا کہ نہیں جانتا, جو جانتا ہے کہ نہیں جانتا. یہ سعدی نے تقسیم کیا نا, سعدی شیرازی کی تقسیم ہے, یہ سعدی شیرازی نے تقسیم کی ہے کہ انسان کی قسمیں کون کون سی ہیں. ایک وہ ہے کہ جو جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا, جی ایک وہ ہے جو نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا, ایک وہ جو جانتا ہے کہ نہیں جانتا. جی یہ جو نہیں جانتا کہ نہیں جانتا, یہ انسان جہل مرکب کا شکار ہے. اس کے لیے جو جہل مرکب کا شکار ہے, اس کے لیے حدیث کیا کہتی ہے, رب عالم قد قتلہ جہلہ, کتنے ہی عالم ہیں جن کو ان کے جہل نے قتل کر دیا. عجیب عجیب حدیث ہے, کتنے ہی عالم ہیں جنہیں ان کے جہل نے قتل کر دیا. یہ شکار ہیں جہل مرکب کا اور یہ مغالطہ علمی کا شکار. تیسری قسم ان میں کون ہے, جو اپن خود سے بڑا عالم کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں, جو اپنے آپ سے بڑا دانشور کسی کو نہیں مانتے, جو کہتے ہیں ہم سے زیادہ کون جانتا ہے, ہمیں تم بتاؤ گے, ہمیں کوئی بتائے گا. ان کا لب و لہجہ آپ دیکھیں تو غرور علمی کا شکار. بلکہ ایک لفظ اگر عرفا نے استعمال نہ کیا ہوتا تو مجھے مشکل ہو جاتی ممبر سے. جی عرفا نے استعمال کیا, شہوت علمی کا شکار, جن کو ان کا علم لذت دیتا ہے. جی اور دوسروں کو وہ جاہل سمجھتے ہیں, اور اس حد تک دوسروں کو وہ جاہل سمجھتے ہیں. بھائی بہت زیادہ ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ میں ایک آدھ دو دوستوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ذرا تھکن کا شکار ہیں. آپ ذرا ایک سے زیادہ مرتبہ بلند صلوات پڑھ لیں. وہ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ سوچتا ہے, اور پھر اس کا اس کے اعمال سے بھی اظہار ہو رہا ہوتا ہے, اس کی سوچ کا اس کے اعمال سے بھی مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی دانشور نہیں ہے. وہ اس کی تسلی کے لیے, بلکہ تسلی تو میں نے اس کا ادب کر لیا, اسے آئینہ دکھانے کے لیے ایک آیہ کریمہ ہے جو سورہ مبارکہ یوسف کی ہی 76 آیت ہے. اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے فوقا, اسے بتانے کے لیے جو یہ سوچتا ہے نا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اور وہ مغالطہ علمی کا شکار ہے, اس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ فوقا کل ذی علم علیم, ہر شخص جان لے کہ اس سے بڑا بھی کوئی عالم ہے. جب وہ شخص یہ جان لے گا کہ اس سے بھی بڑا کوئی عالم ہے تو اس کا یہ غرور مٹ جائے گا, اور یہ غرور علمی اسے مبتلا جہل کر رہا ہے. جس انسان کو توجہ, جس انسان کو یہ پتا ہو کہ مجھے نہیں پتا, اس کے لیے علم کے رستے کھلے رہتے ہیں, اور جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب پتا ہے وہ اپنے دروازے کو بند کر دیتا ہے. لہذا ہمیشہ مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے. فوق کل ذی علم علیم, ہر صاحب علم سے ایک بڑا عالم موجود ہے. بھائی آپ کی میری ہماری کیا حیثیت جسے اللہ نے پے کرے علم بنایا ہو. اللہ اپنے علم کا اظہار کاغذوں پر نہیں کرتا, اللہ نے اپنے علم کا اظہار پیکروں پر کیا ہے جنہیں آل محمد کہا جاتا ہے. آل محمد میں سرداری محمد مصطفیٰ کی ہے. جی اہل بیت مصطفیٰ میں سردار سرکار دو جہاں ہیں. جو آل محمد میں سردار ہے اس سے اللہ کہہ رہا ہے قل رب زدنی علما, اے میرے حبیب مجھ سے کہو کہ میرے علم میں اضافہ کر دے. ممنون ہوں آپ کی توجہات کا. جی جی یہ سیدہ کا کرم ہے کہ یہ مضمون میں بیان کر رہا ہوں, ورنہ ان اس طرح کے مضامین میں مجھے ایک ٹیشو پیپر کا ڈبہ تو خالی کر دینا چاہیے تھا. جی کیونکہ یہ خون جگر سے بیان کرنے والے مضامین ہیں. ये पूरी तवज्जो होगी मेरी तो मैं सही तरह बयान कर पाऊंगा, और आपकी आपकी दुआ चाहिए सलवात के जरिए से। ये शख्स के जो मुगालते इल्मी का शिकार है, ये मुतशाबहात जिन्हें कुरान मजीद ने मुतशाबहात कहा है, कभी ये मुगालते अमली का शिकार है। ये मुतशाबे आयत अल्लाह की है, अल्लाह की आयत है, मखलूक अल्लाह ही की। आप यजीद को नहीं कह सकते कि अल्लाह ने नहीं बनाया उसे, बनाया यजीद को भी अल्लाह ही ने जी। शैतान भी अल्लाह ही की मखलूक है जी, मगर मोहकमात और मुतशाबहात की तकसीम मद्देनजर है। वो जो मुगालते अमली का शिकार हैं उनके लिए मुझे एक हदीस का सहारा और हदीस मुझे नसीब हुई जो मैं आपको उसकी ज्यारत करवा रहा हूं। मासूम फरमाते हैं सलासुन कासिमात जहर, तीन लोगों ने कमर तोड़ दी, कमर शिकन लोग, वो मुगालते अमली का शिकार। सलासुन भाई थक तो नहीं रहे, थोड़ी तसल्ली दीजिए। सलासुन कासिमात जहर, तीन तरह के लोगों ने कमर तोड़ दी। रजुलन इस्तकसरा अमलो, वो शख्स जो अपने अमल को ज्यादा बड़ा अच्छा और बेहतर जानता है, मैंने ठीक किया, इससे अच्छा नहीं हो सकता था, इससे बेहतर नहीं हो सकता था, ऐसा कौन कर सकता है, मुझ जैसा कोई हो तो लाके दिखाओ। जो शख्स इस मुगालते अमली का शिकार है कि इससे अच्छा नहीं हो सकता, वो मुगालते इल्मी के शिकार लोग थे जिनके लिए बहुत कुछ बयान हो गया। ये मुगालते अमली का शिकार है, रजुलन इस्तकसरा अमलो, जो अपने अमल को बड़ा समझता है, बड़ा मानता है कि जी इससे बेहतर नहीं है। रजुलन नसिया जंबा, वो शख्स जो अपनी गलतियों को भूल जाता है। अब मैं यहां जम का तर्जुमा गुनाह नहीं कर रहा, मुतलक जम यानी जो अपनी माजी को भूल जाता हो, जो अपनी गलतियों को भूल जाता हो, जो अपने करतूतों को भूल जाता हो, वो कमर शिकन बंदा है। रजुलन नसिया जंबा, रजुलन उजबा बिराय, यही और वो शख्स जो अपनी बात को, अपनी राय को, अपने मशवरे को सबसे ज्यादा बड़ा मोतबर और सही मानता है। इसने अंजुमन में मेंबरशिप लेते वक्त, ट्रस्ट का मेंबर बनते वक्त, किसी इदारे का रुकन होते वक्त ये क्यों नहीं सोचा था कि वहां सबके मशवरे सुनना पड़ेंगे। इसने उस मीटिंग में जब सबके मशवरे सुन लिए थे और दूसरों की राय भी अक्ल के मुताबिक थी और माकूल भी थी और मुमकिन भी थी, भाई तवज्जो चाहूंगा इस मंजिल पर, बहुत सारे मशवरे माकूल होते हैं, मुमकिन नहीं होते। बहुत अच्छा मशवरा होता है, अक्ल के मुताबिक होता है, मगर उसमें अमल मुमकिन नहीं है। आज नहीं हो सकता इस पे का अमल, इसके लिए कल देखना पड़ेगा, इसके लिए एक दिन और गुजारना पड़ेगा, और ये मुल्क नहीं है इसके लिए अमल करने पर जी। मगर वो शख्स जो ओजबा बिराय, यही जो कमर तोड़ बंदा है ना माशरे की, अच्छा मौलाना नहीं फरमाया किसकी कमर तोड़ते हैं ये जी, सलासुन कासिमात ज़हर, तीन तरह के लोग कमर तोड़ लोग हैं, कमर शिकन लोग हैं। किसकी तोड़ते हैं? माशरे की तोड़ते हैं, माहौल की तोड़ते हैं, इदारों की कमर तोड़ते हैं, अंजुमनों और ट्रस्ट और इदारों की कमर तोड़ देते हैं। इनकी वजह से इदारे कमजोर पड़ जाते हैं। मीटिंग में, इजलास में बैठे हुए थे, अक्सरियत की माकूल राय के मुताबिक फैसला हो गया, तुम दस्तखत भी करके आए हो, वहां बाहर आके कहते हैं मैंने तो नहीं कहा था ये, मेरी तो ये राय नहीं थी, ये सबसे बड़ा खाइन है उस इदारे के साथ कि जो मशवरों के दरमियान उसकी राय नहीं मानी गई तो वो बाहर जाके लोगों को बताता है कि मेरी राय ये नहीं थी, मेरी राय तो इससे हटकर थी। ये शख्स इदारे की कमर तोड़ रहा होता है। मजलिस में अगरचे जवानों की तादाद कम है, सुबह की मजलिस है भाई, इसके लिए तो हुनर चाहिए। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद। मगर बहरहाल बाद में रिकॉर्ड देखेंगे, बाद में मजलिस सुनेंगे, और आज भी इस वक्त भी माशाल्लाह है, एक अच्छी तादाद है, मुनासिब तादाद है, सही तादाद है। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये खतरात हमारे माशरे को जो जिस जो परेशानियों का सामना है, जो उलझनों का सामना है, उनमें से उसके जो असबाब हैं, उसके जो वजूहात हैं, एक वजह यह है कि इदारे कमज़ोर पड़ते हैं। जब वो बाहर जाकर अपनी राय जो अंदर बताकर आया और वो राय कामयाब नहीं हुई, उसकी नहीं मानी गई, वो फिर जगह जगह कहता है कि मैंने तो ये नहीं कहा था, मैं तो इसको नहीं मानता, मेरी राय तो इससे हटकर थी। इसे सोचना चाहिए था कि ये मेंबरशिप इसने ली क्यों थी, इसे सोचना चाहिए था ये ट्रस्टी बना क्यों था। अगर इसने उस इदारे का हिस्सा खुद को बनाया है तो उसके कुछ कवानीन हैं, उसके कुछ उसूल हैं, और उन उसूलों के खिलाफ ये जब जाता है तो ये उस इदारे को कमज़ोर बना रहा होता है। ये मुगालता अमली का शिकार लोग। अजीजो, इन दोनों का इलाज क्या है? सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाला। यानी मुगालता इल्मी का शिकार भी और मुगालता अमली का शिकार भी जो शख्स है और जिसकी वजह से माशरे में नुकसान हो रहा है जी, इसका इलाज क्या है? इसका वाहिद इलाज है, दोनों को एक ही नुस्खा दिया जाएगा, दोनों की दवा एक ही है और वो है हकायक की रोशनी। हकायक को बयान करना, हकीकत को रोशन कर देना। मैं एक जगह से गुजर रहा था, मिसाल दे रहा हूं, मैं एक जगह से गुजर रहा था, रास्ते में सांप बैठा हुआ था, मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। मैं सोचने लगा मूजी है, हमला करेगा। अभी खड़ा मैं सोच रहा था कि आगे जाऊंगा तो ये मूजी हमला करेगा जी, मूजी यानी अजियत पहुंचाने वाला, तकलीफ देने वाला। अब वो कभी सांप होता है, कभी इंसान भी होता है। तो मैं सोच रहा था कि ये हमला करेगा, ये तकलीफ देगा, तो एक बच्चा मेरे बराबर में आके खड़ा हुआ, कहने लगा मौलाना ये प्लास्टिक का है जी। तो जब मैंने सुना कि प्लास्टिक का है तो मैंने उसी पर पैर रखा और उसे कुचलता हुआ चला गया। मालूम ये हुआ, जब हकायक रोशन हो जाते हैं तो इकदामात भी तब्दील हो जाते हैं। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले। भाई आपकी बेदार समातों के लिए इस मिसाल को एक और जुमले से रोशन करूंगा और बेहतर करूंगा। जब मुझ पर रोशन हुआ कि ये सांप मसलन हकीकी नहीं है, प्लास्टिक का है, देखने में कुछ और है, हकीकत में कुछ और है, जब मुझे इसकी हकीकत रोशन हो गई तो फिर मेरे इकदामात भी तब्दील हो गए। सारी दुनिया जिस यजीद से डर रही थी, हुसैन उसकी हकीकत को जानते थे। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले। मुगालता अमली और मुगालता इल्मी का शिकार लोगों का हल हकीकत आशनाई और हकीकत खुलना और हकायक का रोशन होना है। अब वो हकायक रोशन कौन करेगा भाई? वो काम तो हमने बता दिया, करने का किसका है, करेगा कौन ये काम? हकायक रोशन कौन करेगा? हकायक रोशन वही करेगा जो खुद मुहकम हो, जो खुद मुहकम होगा, या लफ्ज और बेहतर करूं, जिस पे खुद हकीकत आशना हो, आश्कार हो, जिस पर हकीकत आश्कार हो, वही हकीकत को आश्कार करेगा। यानी जिसकी चश्मे जान देखती हो, चश्मे सर नहीं, ये वाली दो आंखों से देखने वाले धोखा खाते हैं। ये पंखा जो आपकी छत पे लगा हुआ है कमरे में, ये घूम रहा होता है तो ऐसा लगता है थाल घूम रहा हो, ये थाल नहीं है, इसके तीन पर है, ये सुराते सहरी की वजह से, ये तेज घूमने की वजह से ये थाल लग रहा है। रोड पर रास्ते में पानी नजर आता है, खरीद जाते हैं तो पानी नहीं होता, शराब होता है। एक अंगारे को आप दायरे में घुमाएं तो आपको व्हील लगेगा, जैसे आग का व्हील घूम रहा हो, वो आग का पहिया नहीं होता, वो आग का अंगारा है जो एक जगह एक वक्त में है तो दूसरी जगह नहीं है, लेकिन हमें लगता है ये पूरी तरह से है, यानी पूरा पहिया है। तो हकीकत कुछ और है और नजर कुछ और आ रहा है, तो वही हकीकत आश्कार कर पाएगा जिस पर हकीकत रोशन हो, और हकीकत उसके पर रोशन है, हकीकत उस पर रोशन है जिसके लिए कुरान ये कहता नजर आता है, कदालिका नुरिया इब्राहीम मलकूत समावात वल अर्ज, हमने इब्राहीम को आसमानों में जो कुछ है वो दिखा दिया, जमीनों में जो कुछ है वो दिखा दिया, जिसकी निगाहें एक तरफ उठें तो वो वहां तक पहुंचे जहां तक हदें हैं, जिसकी निगाहें दीवारों की वजह से रुक ना जाती हो और दीवारें उसे अंधा ना कर देती हो, ये मैंने हजरत इब्राहीम के बारे में सुनाया है, और जिस पर इब्राहीम फख्र करते नजर आते हैं वो अली इब्न अबी तालिब ये कहते नजर आते हैं, लौ कुशिफ अल गिता लमज़दत तो यकीना, अगर मुझ अली के सामने से हिजाब हटा दिए जाए तो यकीन में इजाफा नहीं होगा। पर हकायक रोशन है, जो हकीकत बीन है, जो वो सुनते हैं जो हम नहीं सुनते, जो वो देखते हैं जो हम नहीं देखते, हमें जो चीजें नजर नहीं आती वो उन्हें नजर आ रही होती हैं, वो जो आयात मोहकमात में से हैं, मोहकम वजूद जिनका है, वही इन मुतशाबेहात की इसलाह करेंगे। और अजीजो वक्त मेरे पास तंग हो गया और गुफ्तगू भी कुछ ऐसी रही कि आपकी मेहरबानी आपकी मोहब्बत के आपने समाअत फरमाई, वो जिसे हम मोहकम इंसान कह रहे हैं ना, उस इंसान को इंसान उसके लिए बोलना उसकी तौहीन है, बल्कि उसे कहा जाएगा इंसान अकमल, इंसान साज, इंसान परवर, इंसान बनाने वाला, जिसको देख देख कर इंसान इंसान बनते हो, वो इंसान नहीं कहलाएंगे बल्कि इंसान अकमल कहलाएंगे, इंसान कामिल भी नहीं, उरफा की इस्तलाहों में एक इस्तलाह है इंसान कामिल की, इंसान कामिल भी नहीं। मैं हम जिस देखें आप इंसान कामिल के मुरीद हो जाएं, बस यही फर्क है हमारे भाइयों में और इस मजमे में, हम मजारात के मुखालिफ और मुनकर नहीं है, मजारों वाले लोग हैं हम, औलिया इलाही की कद्र करने वाले एहतराम करने वाले लोग हैं, मगर हमारे भाइयों में और हम में यही फर्क है कि वो इंसान कामिल पे रुके हुए हैं, हम इंसान अकमल तक जाना चाहते हैं। मालिक अश्तर इंसान कामिल, हजरत सलमान फारसी इंसान कामिल, अबू ज़र ग़फ़ारी रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम इंसान कामिल, मगर अली इंसान अकमल, हुसैन मौला इंसान अकमल। एक साहब कहने लगे जी हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पे आप कम जाते हैं, आपसे मुराद मेरे मेरे कबीले के लोग, तो मैं दिफा नहीं कर रहा, सही नहीं करते, जाना चाहिए, मगर ये तो इस मयार के लोग हैं, जब चाहे टिकट बनवाएं वीजा लगवाएं और नजफ चले जाएं, जो हर हफ्ते मौला अली को सलाम करने जाता हो, जो जा सकता हो हर महीने इमाम हुसैन को सलाम करने, तो यकीनन इंसान कामिल का एहतराम होना चाहिए, मगर ये तो इंसान अकमल तक पहुंच रखता है, इसका तो ज़ौक ही कुछ और है। मैं जिस जाविये से बात कर रहा हूं, अल्लाह करे मेरी बात में कहीं शुबा ना आ जाए, जो इसका ज़ौक है, जो इसका ज़ायका रूह है, इसका जायका रूह इंसान कामिल पे नहीं रुका हुआ, इसे तो तस्कीन ही नहीं होती जब तक करबला ना चला जाए। इसकी रूह का मयार ऊंचा हो चुका है। हाँ, नहीं जा पा रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि यहां भी गफलत हो जाए। वहां नहीं जा रहे, कराची के मोमिनीन पुरसा दे रहे, तो कराची में पाकिस्तान में दो हस्तियां हैं जिनके घर का गम है, जिनके घर का गम है, एक हजरत अब्दुल्ला शाहगाजी और एक हजरत बीबी पाक दामन लाहौर में। बल्कि एक जाविये से बीबी पाक दामन हजरत मुख्तार ने मकरान के साहिल पर इन्हें पहुंचाया था। एक साहब कल मुझसे चलते हुए पूछ रहे थे कि कैसे आई यहां पर। जी 80 बीबियां थी ये, इन्होंने खत लिखा था हजरत मुख्तार को कि मदीने में आए दिन हम मुश्किलात और मसाइब का शिकार हैं, हमें किसी ऐसी जगह पहुंचाओ जहां के रहने वाले अहले बैत का एहतराम करते हो। तो इन्हें सिंध पहुंचाया गया था। उस वक्त में सिंध कूफे से, कूफे की मैनेजमेंट, कूफे की मुदीरियत, कूफे का गवर्नर सिंध को देखता था। और सिंध तकरीबन लाहौर से भी आगे तक का इलाका, मुल्तान तक तो मुसल्लम सिंध था, यानी तयशुदा है, बहस व मुबहसे हैं तारीख दानों में, मगर मुल्तान तक तो मुसल्लम सिंध था। आइम्मा अहले बैत की जबान पर हिंद और सिंध ये दोनों लफ्ज आए, या वो बोलते थे हिंद या उसके साथ के इलाके को वो कहते थे सिंध। अल्लाह ने जब जमीन खल्क की तो पांच दरिया जमीन की खिलकत के साथ खल्क हुए, उसमें एक दरिया दरियाए मेहरान है। ये दरियाए सिंध जमीन के साथ बना है। ये कहां से चल रहा है? गिलगित चले जाइए, ग्लेशियर के पहाड़ों से चले जाइए। हजरत मुख्तार से इन्होंने कहा था, और बहुत सारी मालूमात हैं, तो और ये तारीखी पैगामात हैं, तारीखी हकाइक हैं। और हजरत मुख्तार ने इन बीवियों को मकरान के साहिल तक पहुंचाया था। ये हजरत ताफ्ता की बेटी नहीं है, जो शुबहा डाला जाता है कि ये वहां एक मजार है एक बुजुर्ग का, ये उनकी बेटी हैं और बीबी पाक दामन नहीं है। यह वो तो कई सौ साल बाद के हैं, हजरत गंज हजरत हजवेरी, दाता हजवेरी के कई सौ साल बाद के हैं ताफ्ता साहब, जिनकी वहाँ मज़ार है लाहौर में। और दाता साहब तो इस मज़ार पर उनका मुसल्ला था, इराक ईरान में मुसल्ला कहते हैं, हमारे यहाँ चिल्लागाह कहते हैं, बड़े सभीर में उनका चिल्लागाह था, वहाँ मुसल्ला बोलते हैं, यानी जहाँ वो बैठकर इबादत करते थे, मुसल्ला बिछाते थे। तो दाता साहब का तो हजरत बीबी पाक दामन के मज़ार में मुसल्ला है, और ताफ्ता तो दाता साहब के कई सौ साल के बाद के हैं, और वो यहाँ बैठकर तवस्सुल किया करते थे मौला अली की बेटी से। क्या हुआ है अहले बैत के साथ? एक मरसिए का मिसरा है, कहां का मुसाफिर, कहां रह गया मदीने वाले, कहां कहां चले गए। मौला अली के बेटे भी अली थे, मगर मौला अली की बेटियों का काम भी हुसैनी है, हसनी है। जनाब रुकैया बिनत अली जो लाहौर में है, मैं कल की मजलिस में कह चुका और दस्तावेज भी मौजूद है, मुस्तनद मोहकम इदारा हरम में इमाम रजा ने तहरीर दी है इस मज़ार की तस्दीक पर, तस्दीक की है, ताईद की है कि ये मज़ार जनाब रुकैया बिनत अली का है, ये उन छोटे छोटे दो बच्चों की माँ है जिनके जनाजे मां ने नहीं देखे। जिनके जनाजे घर नहीं आए। यह हजरत अब्बास की बहन है, आज 5 मुहर्रम है। अभी कुछ देर के बाद आप एक ताबूत की ज़ियारत करेंगे। ज़ाहिरन 2 ताबूत, बड़ा जिगर है जनाबे ज़ैनब कुबरा। शरीकतुल हुसैन बीबी, आलिमा गैर मुअल्लमा बीबी, अकीला बनी हाशिम बीबी। जब मुसीबतें बढ़ने लगे ना तो अक्ल का कमाल पर होना यह अहले बैत का कमाल है। अकीला, अकीला, आकिला नहीं, अकीला। जिस लहजे में कमरे बनी हाशिम बोला जाता है ना, उसी लहजे में अकीला बनी हाशिम बोला जाता है। जिस कमाल हुसन पर हजरत अब्बास फाइज थे, कमाल फहम व फरासत पे जनाब ज़ैनब फाइज है। जिसकी दलील दूं, खैमे जल रहे थे, सर से चादर उतर चुकी थी, भाई भतीजों बच्चों के लाशें देख चुकी थी, और भाइयों में भी ऐसे भाई का लाशा कि जिसे इमाम हुसैन, जिसे जनाबे ज़ैनब अपने लिए सब कुछ समझती थी। आपकी आवाजें बुलंद हो रही हैं। जब 11 मुहर्रम को इमाम हुसैन के लाशें पे आई थी ना, तो इमाम सज्जाद से कहा था, ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हो मेरे भाई के बदन पे धूप आ गई है और मेरे ऊपर, मेरे सर पे चादर नहीं है। फरमाया मैं 3 साल की थी, कम सिन थी, अपने घर के सहन में सो रही थी, तो मैंने महसूस किया कि सारे सहन में धूप आ गई है मगर मेरे ऊपर साया है। तो मैंने पहलू बदल के जब देखा तो यही भाई था जो चादर पकड़े था। अब बताओ ये ज़ैनब कहां सब्र करे। हुसैन के बदन पे धूप आ गई है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले बैत में, हमें रोने रुलाने वालों में करार दे। गुजारिश करूंगा जब मजलिस में बैठे, मैं बच्चों जवानों से कह रहा हूं, तो तकल्लुफ करके नहीं रोया करो। खास तौर पर आज तो उस बीबी के बच्चों का जिक्र है जिस बीबी ने अपने बच्चों पे गिरिया नहीं किया। क्या जनाबे ज़ैनब के सीने में मां का कलेजा नहीं था? ओन मोहम्मद के कटे हुए सर देखती थी ना तो अपना चेहरा मोड़ लेती थी, इसलिए कि अगर ज़ैनब की आंखों में जनाबे रबाब ने आंसू देख लिए। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। अगर बीबी उम्मे लैला ने बीबी की आंखों में आंसू देख लिए तो फिर उनके लिए सहारा कौन बनेगा? अजरुकम अल्लाह। बार बार आ रहे हैं नवासे, बार बार आ रहे हैं मौला अली के नवासे, मौला हुसैन के भांजे, जनाबे ज़ैनब के बच्चे, मामू हमें शहादत का मौका, कुर्बानी का मौका दे दें, हमें भी मौका दे दें कि हम अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं। और इमाम हुसैन ये कह के लौटा देते हैं कि कुछ देर के बाद आना, अभी वक्त नहीं आया, तुम बहुत कम सिन हो, तुम अपने माँ का सहारा हो, अपनी माँ के साथ आए हो। तो कहते हैं कि जनाबे ज़ैनब दोनों बच्चों को लेकर आईं और कहा, भाई अगर कल माँ ज़हरा ने पूछ लिया, ऐ ज़ैनब मेरा बच्चा मारा गया, भाई ओनो मोहम्मद को जाने की इजाजत दे दीजिए। अब दोनों शहजादों को अल्लाह आपके बच्चों को सालिम रखे, और जिन घरों में इन उम्रों के बच्चे हैं ना, उन घरों की रौनकें भी कुछ और हैं। दोनों शहजादों को इमाम हुसैन ने तैयार किया, हजरत अब्बास ने सवारा घोड़ों पर बिठाकर रवाना किया, और जब रवाना हो रहे थे तो माँ एक नसीहत कर रही थी, खबरदार देखो पानी ना पी लेना, के याद रहे कि तुम्हारे मामू प्यासे हैं, सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है, दोनों शहजादे मैदान करबला में अपने जिहाद को पेश कर रहे, और जिहाद करते हुए खबर आई जनाबे जैनब तक कि दोनों नहर की तरफ गए। तो जनाबे जैनब ने हजरत अब्बास को बुला के कहा, अब्बास मुझ पर एक एहसान करो, मैदान में जाकर जरा उन्होंने मोहम्मद को यह बता दो कि हुसैन प्यासे हैं, कहीं पानी पाकर तुम पानी पी ना लेना। हजरत अब्बास ने खुद को वहां पहुंचाया जहां तक हजरत अब्बास की आवाज जाए, आवाज देकर कहा उन्होंने मोहम्मद तुम्हारी मां परेशान है, और आकाजादी ये कह रही है कि ख्याल रहे कि अली असगर प्यासा है। दोनों शहजादे लड़ते लड़ते नहर के किनारे पहुंचने के बावजूद प्यासे रहे। मां का हुक्म है, वफा का तकाजा है। आप रो रहे हैं, मैं एक जुमला कह दूं, हजरत अब्बास का पानी पाकर ना पीना बहुत बड़े जिगर की बात है। शहीद हो गए, ऑन जख्मी घोड़े से गिरे और आवाज दी मामू हमारी मदद करें। हजरत अब्बास, हजरत अली अकबर, खुद इमाम हुसैन पहुंचे, दोनों बच्चों के बदनों को उठाया, मोहम्मद की शहादत हो चुकी है, ऑन में दम बाकी है। जब आए हैं ना खैमागाह के करीब तो सारी बीबियां वहां खड़ी इंतजार कर रही थी, मगर जैनब नजर नहीं आई। अय्याम गिरिए के हैं, अल्लाह आपको इसका अजर व सवाब अता फरमाए। इमाम हुसैन ने सवाल किया, बहन जैनब कहां है? तो बताया खैमे में हालत सजदा में है, और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, या अल्लाह तूने मेरी कुर्बानी कबूल कर दी। लाके रखा जनाजों को, और जनाबे जैनब को बुलाया, जनाबे जैनब करीब आई तो इमाम हुसैन की आवाज आई, जैनब ऑन में दम है, बार बार आंख खोलता है और एक ही सवाल करता है कि अम्मा कहाँ है। जनाबे जैनब ने अपने बच्चे को गोद में लिया, शहीद हो गए। जनाबे ऑन ने दो जुमले कहे और शहीद हो गए। मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं, बहुत गिरिया हो गया, अल्लाह आपको अजर व सवाब अता फरमाए। ये जो आपकी बुलंद आवाजें हैं, ये मौला इमाम सादिक को बहुत अजीज है। बुलंद आवाज से रोने वालों के लिए इमाम जाफर सादिक खास दुआएं देते। दो जुमले कहे हजरत ऑन ने, एक जुमला तो यह कहा, हल वफ़ा तो उम्मी, अम्मा क्या हमने वफादारी का हक अदा कर दिया? दूसरा जुमला ये कहा, अम्मा जब मदीने जाइएगा बाबा को हमारा सलाम कहिएगा। जैनब मदीने पहुंची, ए अब्दुल्लाह ऑन ने तुम्हें सलाम भेजा, बच्चों ने वफादारी का हक अदा कर दिया। लानतुल्लाह अला मौलाना तालिमीन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन।
मामू पे फिदा हो गए ज़ैनब के दुलारे, मामू पे फिदा हो गए ज़ैनब के, मामू रे पामू पे फिदा हो गए, मामू पे फिदा हो गए ज़ैनब के दुलारे, मामू पे फिदा हो गए ज़ैनब के दुलारे, मामू पे फिदा हो गए ज़ैनब के दुलारे। मुझे ये तो नाच के पाले हुए निकले
Yeah. وجل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي